शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली है याद और सेवा। याद से क्या प्राप्ति होती है, सेवा से क्या प्राप्ति होती है, और जो सेवा करते जाते हैं घर गृहस्थ में रहकर भी इतनी सेवा करते हैं, बाबा उनको टाइटल देते हैं ये बहादुर बच्चा है ना, बहादुर बच्चा है। और बाबा उनको राय देते हैं अगर लौकिक बच्चे नहीं है, क्योंकि बच्चों का तो बंधन होता है, तो सेवा में लग जाओ, निर्बंधन है तो सेवा में लग जाओ, भले घर गृहस्थ में रहो तो भी बहुत सेवा कर सकते हो और अपनी तकदीर को ऊंच बना सकते हो। तो सेवा से क्या क्या प्राप्ति होती है, फिर याद से क्या प्राप्ति होती है। बाबा कहते भी कर्म तो विनाश होंगे ही, लेकिन सजाओं से बच जाएंगे, तकदीर ऊंची बन जाएगी। बहुत प्राप्ति है याद में, नहीं तो बाबा कहते अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। शरीर छूट गया फिर कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, तो बाबा सावधान भी करते रहते हैं और भविष्य में क्या होगा वो भी बताते रहते हैं। जो बाबा ने ये कब कहा होगा वो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, क्या हालतें हैं, कैसी संसार की इस समय परिस्थिति है वो भी देख रहे हैं। तो ये तो बाबा ने कब से कह दिया है, जो उस समय लगता था ये कैसे होगा, लेकिन आज हो रहा है। तो बाबा ने भविष्य का भी बहुत कुछ बताया है मुरलियों में, वो भी सुनेंगे। आज 3/4/2026 है। मीठे बच्चे बाप समान, चलो मीठे बच्चे बाप समान रहन दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। औरों की सेवा तब कर सकेंगे जब अंदर में रहन दिल होंगे, क्योंकि रहन दिल बनकर ही सेवा की जाती है ना, अभिमान से थोड़ी सेवा की जाती है। अगर अभिमान है अंदर और सेवा करेंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अंदर में रहम दिल होंगे तभी सेवा कर सकेंगे। तो बाप समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है, उनको बहादुर बच्चे बाबा टाइटल देते हैं। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है, क्या आधार है जिससे हमारी तकदीर ऊंची बन जाए? उत्तर है, क्या है आधार? याद की यात्रा, यही आधार है ऊंच तकदीर बनाने का। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, बाप और वर्से को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है तकदीर की, जहां बात आती है कौन सा गीत होगा? तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर आई हूँ, कुछ ऐसा गीत है। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं, है ना? जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, अपना भाग्य अपने साथ लाया है। और जब कोई शरीर छोड़ता है तब क्या कहते हैं, अपना कर्म अपने साथ ले गया। तो कर्म अपने साथ ले गया और फिर वो भाग्य बन करके वो कर्म आता है वापस, और उस अनुसार वैसा ही उसका फिर संस्कार बन जाता है। तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं, ये तो कर्मों अनुसार ही। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, लौकिक में बच्चा पैदा हुआ तो बाप ये तो समझता है कि वारिस पैदा हुआ, वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। ये बड़ी बात है, ये इस जन्म में अगर सफल किया है लौकिक में भी, तन मन धन से सेवा की है, भाग्य उससे बन जाता है और उस अनुसार फिर जन्म मिलता है। तो जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को, कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, तकदीर ले आए हैं तभी तो बाबा के बच्चे बने, और यहाँ पर बाबा के बच्चे बनकर फिर तकदीर बनाते भी हैं, ले भी आए हैं और बनाते भी हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है बाप को और बाप को याद कर रहे हैं, उनकी तकदीर ऊंची बनती जाएगी। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जिस बाप के पास जन्म लिया है उस पिता की याद भी तो होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक अपने को देख रहे हैं, देख रहे हैं हम सब अपने आप को कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। पहले तो किस बात में मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए, सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो उसके साथ साथ रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा परिचय, क्योंकि बाप आकर क्या ज्ञान देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में आ गया है, आ गया है ना सारा चक्र स्मृति में। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते, तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। हमारी कितनी ऊंची तकदीर बनी है बाबा का बनने से, हम उस तकदीर को भी जानते हैं। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है, हाँ भले घर बार में घर में रहते हैं पर निर्बंधन है तो वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस का अच्छा चांस है। माताएं भी हमारी बहुत अच्छी सर्विस करती है, हमने तो देखा माताएं कैसे गीता पाठशाला भी संभालती है, गीता पाठशालाओं में क्लास भी करने जाती है, हा? है ना माताएं जो क्लास कराने जाती है और गीता पाठशालाओं में हाथ उठाओ, हाँ देखो ये सब जाती है। और अपने घर में भी गीता पाठशाला खोले हुए, फिर वो गीता पाठशाला के स्टूडेंट्स को लेकर आती है, फिर कहती है देखो ये हमारे गीता पाठशाला में आते हैं, तो कितनी सेवा करती होगी। तो बाबा कहते हैं तो बाल बच्चे कोई नहीं तो उनकी उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है, अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना, और ये अच्छा है बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे, बाबा की बहुत सेवा कर सकते हैं। या बड़े हो गए हैं बच्चे तो बहुत सेवा कर सकते हो, बच्चों का बंधन नहीं है बड़े हो गए हैं। वो जैसे वानप्रस्थी हो गए, फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। वानप्रस्थी तो हो गए लेकिन फिर संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है, किसका संग मिलता है भक्ति मार्ग में वानप्रस्थी हुए तो? साधु संन्यासियों आदि का। निवृत्ति मार्ग वालों का संग मिलता है क्योंकि उनके पास जाते हैं सत्संग करते हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। जीवन मुक्ति है प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा। वो तो निवृत्ति मार्ग की बातें सुनाएंगे और मुक्ति की बातें सुनाएंगे, मोक्ष की बातें सुनाएंगे, जन्म मरण में आना ही नहीं है ये सुनाएंगे। परंतु बाबा कहते हैं सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। बाबा तो प्रवृत्ति मार्ग वालों की सेवा करते हैं ना, तुम बच्चे घर गृहस्थ में रह के स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, तो प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा वो दिला न सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। सत्यु की बातें सुना सकते हो, सन्यासी थोड़ी सत्यु की बातें सुनाएंगे, वो तो यही कहेंगे ना दुनिया तो काग विष्ठा समान सुख है यहाँ, तो इसलिए काग विष्ठा समान कहकर के बस मोक्ष में जाना है, मुक्ति में जाना, यही कहेंगे। तो बाबा कहते हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है, भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है, हाँ एक कोई नहीं लेगा भारतवासी, 84 जन्म भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी, ऐसे घराने में आते हैं, नंबर वार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते। अब बाबा ने क्या राज समझाया इसमें, पहला नंबर श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। अब दूसरा नंबर में भी तो श्री कृष्ण ही होगा, सेकंड नंबर उसका भी तो बचपन का नाम कुछ और होगा या श्री कृष्ण ही होगा। श्री नारायण को जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का भी नाम श्री कृष्ण होगा या कोई और होगा। अब बाबा कहते वो सेकंड नंबर श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण को दूसरे नंबर के श्री कृष्ण को झूले में नहीं झुलाते, केवल पहले नंबर के श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं। क्यों क्यों सेकंड नंबर के श्री कृष्ण को झूले में नहीं झुलाते? क्योंकि कला तो कम हो गई ना, दूसरा जन्म लिया, पहले नंबर 16 कला, तो थोड़ी तो कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसी की होती है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर की नहीं होती है। मनुष्य समझते नहीं है कि श्री कृष्ण एक है व दो तीन है। श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है ये किसको भी पता नहीं है। पूजा तो सिर्फ नंबर 1 की होती है, मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं, मार्क्स तो नंबर वार मिलते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ पहले नंबर वाले की होती है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करो, मम्मा बाबा पहले नंबर में, पहले नंबर का श्री कृष्ण, फिर वो पहले नंबर की राधे, श्री राधे, तो मम्मा बाबा को फॉलो करें, ये पुरुषार्थ हो। उनकी राजधानी ले लेवे, जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी, सत्युग में कोई राजा रानी नहीं होता, महाराजा महारानी है। तो त्रेता में आते हैं तब राजा रानी बनते हैं, उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है सत्युग में, वो बाद में शुरू होता है। फिर द्वापर में राजा ही तो है, लेकिन वहां पर महाराजा का जो लकब है वो अंग्रेज देते थे, पैसा लेते थे और फिर उनको महाराजा का भी लकब देते, भले वो राजा नहीं था लेकिन उनको महाराजा का लकब मिल जाता था। तो बाबा कहते हैं बाद में वो बाद में शुरू होता है राजा रानी, और द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है, फिर राजा का लकब कम हो जाता है, महाराजा उनसे बड़ा हो जाता है, फिर राजा का लकब कम हो जाता है, फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार, साहूकार में फर्क तो रहता है, हाँ सब बहुत फर्क होगा। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति ही सिखलाते हैं, वो ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी तो मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा न सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं, इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेगी। बाप सबको ले जाते, इतनी सारी करोड़ों करोड़ों आत्माएं, तो वो कहाँ जाकर के ठहरेगी। सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, सब धर्म वाले जाएंगे, सब कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे। तो परमधाम में तो सब धर्म वालों के भी सेक्शन अलग अलग है, तो ये भी तो समझाना है। ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है, कल्प वृक्ष जो यहाँ है ये जिस्मानी जो है उनका झाड़ है, जीव आत्माओं का झाड़ है बाबा कहते हैं, और जो परम धाम है वो आत्माओं का झाड़ है। तो ये किसको भी पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है, परम धाम में भी कैसे आत्माएं जाके खड़ी होगी, बाबा कहते हैं वहां कोई धरती थोड़ी है जहाँ बैठेगी, खड़ी होगी कोई स्थान थोड़ी है, बस परम धाम में आत्मा चमकता हुआ सितारा रहेगी, पर वो झाड़ के रूप में होगा। तो तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान है, आत्माओं का भी झाड़ है तो जीवात्माओं का भी झाड़ है। ये कल्प वृक्ष जो है वो जीवात्माओं का झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना क्या कहेंगे, अगर मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये जब समझते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बाबा कहते उसको कहेंगे जीते जी मरना। आत्मा शरीर में है पर अलग है, तो जैसे शरीर कोई मरता है तो अलग हो जाती है आत्मा, पर शरीर में होते हुए भी अलग महसूस करे अपने आप को, ये है जीते जी मरना। तो बच्चे जानते हैं मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना भी गोया जीते जी मरना है। आप हुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो जैसे शरीर से मर गई तो दुनिया ही मर गई उसके लिए। आप हुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सब को छोड़ दिया, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो पहले तो पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। कोई ऐसे अभी बाबा कहते कोई को नहीं सोचना चाहिए जल्दी शरीर छोड़े, जितनी आयु बढ़ती जाएगी उतना बाबा को याद कर सकेंगे। तो इसीलिए पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे की अधिकारी बन फिर जाना है शरीर छोड़ना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए तो जल्दी मरना माना शरीर छोड़ना ये भी अच्छा नहीं है। जो अच्छे पक्के योगी हैं उनको शरीर जल्दी छोड़ना भी अच्छा नहीं है। तो जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है। क्यों जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए शरीर अगर पक्के योगी है तो? क्योंकि वो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं, तो रूहानी सेवा करते तो वो योग में रहकर करते हैं। बुजुर्ग भी हैं तो भी उनसे उनकी भी तकदीर और ऊंची बन जाएगी, और जिनकी सेवा करेंगे उनकी तकदीर भी बनेगी। तो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं, मर जाएंगे तो सेवा तो कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वो भी बाप से वर्षा पा लेंगे। इसलिए बुजुर्ग तो बहुत प्यार से बाबा की सेवा करते, जवान भी करते हैं लेकिन बुजुर्ग है तो जितनी आयु बढ़ती जाएगी हेल्दी अच्छे तो बहुत सेवा कर सकते हैं, तो वो भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आगे भी ऐसे कहा था, गीता में भी है, हे अर्जुन तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, आगे भी ऐसे कहा था। किसको भी समझा सकते हो, क्या समझाओ? बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। ऐसे कहेंगे क्या? तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। हम सबकी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है, ये सबको बताना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। कैसे बनाना है सतो प्रधान? याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना है, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे कैसे? क्योंकि ज्ञान तो रोज हमें मिलता रहता है ना, तो वो तो पढ़ाई है, पर याद का चार्ट रख सकेंगे कि कितना समय याद किया। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, दे रहे हैं, रोज ज्ञान दे रहे हैं, तो जांच करनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। अब बाबा देखो भविष्य में क्या होना है वो बताते हैं, नई दुनिया को भी याद करते हैं। अब उथल पुथल तो होनी है, उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है, अभी तो जोर से तैयारी हो रही है, उथल पुथल तो होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ, खुद तो बनाते रहते हो और दूसरों को कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ, बॉम्ब नहीं बनाओ, और खुद बनाते रहते हैं। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, सब मरीज में ना, तो जो जहाज जो पानी के नीचे रहते हैं सब मरीज, उनमें भी रॉकेट्स होती है, वहां से भी समुद्र से भी रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो मिसाइल छोड़ते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं समुद्र के नीचे भी वो रखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर फिर बॉम्ब छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सत्य है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं बाबा कहते अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर टावर्स बनाते रहते ना मकान, तो बाबा कहते इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। भगवान उवाच, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए। इसलिए बाबा कहते सफली करे, सफली होगी उसकी जो करे हरि के नाम, ईश्वर के नाम। तो लड़ाई तो जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। क्या करेंगे, अभी जो भी बॉम्ब छोड़ते हैं या मिसाइल छोड़ते हैं, तो जहां पर उनका उत्पादन है, जहां से उस देश की कमाई है, उस पर ही बॉम्ब छोड़ते हैं, डालते हैं, तो देखो वो उत्पादन ही खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉकेट सबके खाली हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितना घुस पड़ते हैं ऐसे समय, जहां पर कुछ ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है, वहां चोर घुस आते हैं, सारी जो उनकी जो कुछ सब कुछ आगे वो पड़ा हुआ है, तो वो सब चोरी कर लेते हैं। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब क्या होगा, बाबा कहते हैं ये सब मिट्टी में मिल जाना है। भगवान उवाच, मकान आदि सब गिरेंगे, बॉम्ब्स आदि गिरने से क्या होगा, फिर जब ऐसे गिरेंगे तो सृष्टि के तीन भाग खलास हो जाएंगे, सृष्टि के तीन भाग खलास हो जाएंगे, अभी जो भी कुछ है तीन भाग खलास हो जाएंगे, बाकी एक भाग बच जाता है, और उस भाग में क्या होगा, कौन सा भाग बचेगा, कौन सा भाग बचेगा, बोलो ना जोर से, भारत। कौन सा भाग बचेगा, भारत। भारत वो एक हिस्से में है, बाकी तीन हिस्सा पानी में चला जाएगा, तो भारत वो एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हैं, वैसे भी सब बाद में आए ना, दूसरे पश्चिमी दुनिया कहाँ थी पहले, तो 500 साल 600 साल पहले ही ये सब अमेरिका वगैरह आया है। तो बाबा कहते हैं बाकी तो सब बाद में आए हैं, जो पूर्वी भाग है वो तो बाबा कहते हैं वो अविनाशी भाग है, पर पश्चिमी भाग तो सब बाद में उभरा है। तो बाकी तो सब बाद में आए हैं, अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। और भारत खंड केवल यही नहीं जो अभी है, ये सब जो ईस्ट में जो देश है वो सब भारत खंड के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा, मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसीलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, छोड़ नहीं देना है, सन्यासी नहीं है हम, तोड़ निभाना है। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस में लग जाते हो, घर गृहस्थ में भी रहो और सर्विस पर भी रहो। स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा, कहाँ बाहर नहीं जाएं, अब बुजुर्ग है कहीं ज्यादा बाहर नहीं निकल सकते, तो अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करना चाहिए। जो आपके घर में आते हैं उनकी भी सेवा करो, आप उस आपके पड़ोसियों की सेवा करो, बिल्डिंग वालों की सेवा करो, वहाँ ही सेवा करो, भले कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। आगे कहते थे ना, आगे भक्ति मार्ग में क्या कहते थे भगवान को, हे बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो तुम औरों पर रहम करो। तुम पहले भक्ति मार्ग में भगवान से रहम मांगते थे, अब भगवान ने तो रहम किया है बच्चों पर। कल बताए ना, इतना बड़ा दुकान भगवान ने खोला है, पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद, कितना सारा बड़ा दुकान खोल दिया है बाबा ने, खूब ले रहे हैं इस दुकान से। तो जो आप हमको मिला है वो रहम करके दूसरों को देना है। तो बाबा कहते हैं, तुम पहले कहते थे भगवान को, कहते थे हम पर रहम करो, अब बाबा कहते हैं कि तुम औरों को पर रहम करना चाहिए। हाँ, तुमको औरों पर रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है तुम भी औरों पर रहम करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो ये कुछ भी नहीं है। बाबा कोई हठयोग नहीं सिखाते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिको, हे बच्चों, हम बाबा के आशिक भी हैं तो बच्चे भी हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ पाप भस्म होंगे, तो मैं क्या गारंटी करता हूँ, हाँ ये गारंटी करता हूँ तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। भगवान अभी सच्ची गीता सुना रहे हैं जिससे तुम जीवन मुक्ति पाते हो। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। हाँ, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हरेक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है, ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद यज्ञ तप आदि करने, वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। गीता में भी है, मैं ये जो भी यज्ञ तप हवन आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, मेरे मिलने का रास्ता मैं स्वयं बताता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए हैं। अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे। अब बाबा कहते हैं खाली चित्र किसी ने देख लिया सीढ़ी का उससे वो समझ नहीं सकेगा। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। हाँ, कैसे समझाना है? बाबा कहते हैं जब तक समझाए नहीं तो मिसाल बाबा क्या देते हैं, जैसे छोटा बच्चा हो। अब छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है ना कि देखो ये हाथी है, हाथी है, तो वो बच्चा जो है वो हाथी का चित्र देखेगा। फिर जब प्रैक्टिकल में हाथी देखेगा कहेगा, वो खुद ही कहेगा ये हाथी है, क्योंकि फोटो देखा है हाथी का। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है ये हाथी है, फिर जब वो हाथी देखेगा तो वो चित्र भी याद आएगा कि ये मैंने देखा था चित्र में हाथी। जैसे तुम्हारी बुद्धि में भी आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम जो चित्र दिखाते हैं, इतने सारे मॉडल्स दिखाते हैं ना, स्वर्ग के मॉडल्स। अभी तो कितने सारे म्यूजियम बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर में भी कितने म्यूजियम बन रहे हैं, और इतना भव्य, इतना सुंदर स्वर्ग के मॉडल्स सजाते हैं, बड़ा वंडरफुल। तो बाबा कहते हैं चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा, केवल नहीं वो म्यूजियम में जितना वो मॉडल रूप में दिखाते हैं, वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वो फिर कहाँ गए, कहाँ गए वो सारे हीरे जवाहरातों के महल? बाबा कहते हैं वो फिर प्रायलोप हो जाते हैं, प्रायलोप गुम हो जाते हैं, ये सब चीजें गायब हो जाती है। सत्य त्रेता की कोई भी चीज, बाबा कहते कलयुग में थोड़ी होगी, सब चीजें गायब हो जाती है। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना? इतना धनवान था तो गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, फिर गरीब से साहूकार बना है। वो जो साहूकारी थी सत्य त्रेता की, वो सब खत्म हो गई, तब गरीब बन गया, अभी फिर गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसीलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं तो उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी। हाँ, वो भी समझाए, भले नए नए हैं, समझाते रहेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे ना सेवा करते हैं, लेकिन फिर बाबा लेकिन भी कहते हैं कई बच्चे अशांति भी फैलाते रहते हैं। एक तरफ कई बच्चे सेवा करते रहते हैं, खूब सेवा करते हैं बाबा की, और कई फिर ऐसे हैं जो आते हैं पर और अशांति फैलाते रहते हैं, अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबर वार तो है ना। फिर बाप कहेगा, अब अंत में क्या होगा, ऐसा वायुमंडल खराब करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो हाँ बाबा ने कहा धम चक्कर मचाते हैं, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो, सजाएं खाएंगे। तो बाबा कहेगा ना तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेगी। फिर कहेंगे, जब सजा मिलती है ना, फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया, नाहक हम नहीं करते तो कितना अच्छा होता था, लेकिन हमने नाहक पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। बाबा को आके सच बताओ, उस दिन भी बाबा ने कितना सुतमत सुनाया था, एक बच्चा आया, अब भूल तो छोटी सी की होगी लेकिन खास आया बाबा को बताने कि बाबा मैंने ये भूल की, तो बाबा ने उनकी कितनी महिमा गाई। नहीं तो वृद्धि होती रहेगी, ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, महसूस करते हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है, पर फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं है। नहीं भी चाहते तो भी उसको खत्म नहीं कर सकते, तो फिर क्या कह देते, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहे। बाबा के पास आते हैं, सरेंडर भी हो जाते, कहीं भी टिकते नहीं है। ऐसे है कुछ? हाँ, टिकते नहीं है, जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ परेशानी करेंगे सबको, तो उनको निकाल देते, भी हमारे डिपार्टमेंट में मत आओ। अब वो कहाँ जाएगा आखिर, भटकता रहेगा। तो इसीलिए फिर बाबा कहते हैं, फिर वो टिक नहीं पाता है, तो फिर बाबा कहते हैं ये आदत मिटती नहीं है, इससे तो घर जाकर रहो अपने घर में, क्यों यहाँ सबको परेशान कर रहे हो। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में अब कौन कौन बहादुर है ये तो बाप बैठ नाम बताते हैं। बहादुर है ना हमारी सेना में, तो बाबा नाम लेते थे, देखो कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, बाबा सब दादियों के नाम लेते थे, कितनी सेवा करते, बस भागते रहते। उस समय तो दादियां ये सेवा करती थी, तो बाबा कहते कौन कौन बहादुर है ये बाप बैठ नाम बताते हैं, बाकी लड़ाई आदि की तो यहाँ बात नहीं है। दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही वहां तो ये बात नहीं है, ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे, बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बननी है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि अंदर परमात्मा है। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा तो नहीं कहते हैं। तो ऐसे थोड़ी कि अंदर में परमात्मा है, वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, ये सब रॉन्ग है। परमात्मा अलग है, आत्मा ही अलग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है। शिव बाबा का पार्ट क्या है, सर्विस करने का। बाबा तो सेवा करने आते हैं ना, उनका तो पार्ट ही है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनी हैं, उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो एकदम 100% सतो प्रधान थी, फिर नंबर वन बाबा कहते नंबर लास्ट में आते हैं, फिर उनके तन में बाप बैठ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो उनकी मत पर चलना पड़े ना, जो शिव बाबा की मत पर चलना पड़े ना, क्योंकि वही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है, तुम जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए, देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं, अब फिर सब रिपीट करना है। जो देवता थे नीचे गिरे, नीचे तक आए, अभी फिर हिस्ट्री रिपीट करनी है, फिर पुनर्जन्म लेना है, फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, योग बल से तुम पांच विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। कैसे जगत जीत बनते हो, पांच विकारों पर जीत प्राप्त कर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की तो बात नहीं है, कोई लड़ाई करके उनको जीत लेंगे और हम जगत जीत बन जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप को याद करते रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। भले शरीर कैसा भी है तो भी बाबा की याद बनती रहे होती रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वरदान, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि है ना, 100% बाबा में निश्चय कितना है तो क्या कहेंगे सब, 100%। तो जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, इतना निश्चय है बाबा में। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, हाँ दैवी परिवार वाले भी पेपर ले, संसारी भी कोई पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी कि उसका भी कल्याण हो। ये भावना होगी तो उसका संस्कार परिवर्तित हो जाएगा। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, तो बदल ही नहीं सकता, बाबा कहते अधीर्य नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की नींद है। समय चाहिए ना वो फल निकलने लिए, ड्रामा की नींद है कि निकलेगा फल। स्लोगन, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। कितना बाबा ने इतनी मुरलियों में नम्रता और मधुरता के गुण पर कितना समझाया। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती है। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। मधुरता होगी तो फिर हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे ये बोल बोल नहीं रहे, केवल बोल बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। वाणी द्वारा सेवा पर मिठास से बोलेंगे तो उनको भी प्रेरणा आएगी कि हम भी ऐसे मीठे बने और ऐसे बोलें, हम भी ऐसे ही बोलें। सबको सुनकर सीखने की फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नीचे से मैं देख रही थी बहनें दौड़ दौड़ के ऊपर आ रही है, जो नीचे से आए हाथ उठाए, देखो कितने आ गए हैं। तो आप सबका नाश्ता, दिन का भोजन बड़े डाइनिंग हॉल में होगा, पांडव भवन में वही करेंगे। अभी तो कल से मीटिंग भी शुरू हो रही है, इसमें जो मीटिंग में भाग लेने वाले निमंत्रित भाई बहने वो हाथ उठाएं, मीटिंग वाले। ठीक है, कल से, कल शाम से मीटिंग होगी। और इस बार तो सुना है कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी समा नहीं सकेंगे, बहुत बढ़ गए हैं, तो डायमंड हॉल में मीटिंग होगी, पता है ना? डायमंड हॉल में। कल कोई बता रहा था इतना सुंदर सजा रहे हैं डायमंड हॉल को, जहां मीटिंग होनी है। चलो ओम शांति।